नमस्कार, गुड इवनिंग शुभ संध्या। घड़ी में शाम के 8:30 बज चुके हैं और हम ठीक अपने वादे के अनुसार एक बार फिर हाजिर हैं आपके अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स कैन में। श्रोताओं, आज के अंक में तमाम खेल खबरों के साथ मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट जया भारती, और इन खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने खेल विशेषज्ञ रजत सेन गुप्ता। रजत जी, आपका स्वागत है।
धन्यवाद।
आज की जो क्रिकेट मैच चल रहा है उसमें भारत की स्थिति लगभग साफ है। निशानेबाजी विश्व कप में भी अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला। कल भारत का मुकाबला हॉकी में 7 बार के विश्व कप विजेता जर्मनी से है।
जी, तो पहले जो आज हो रही घटना है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। भारत बहुत अच्छे पोजीशन पर है और ये ओडीआई जो है भारत के झोली में जाना चाहिए, क्योंकि अभी तक सिर्फ एक ही विकेट डाउन हुआ है भारत का, और रोहित शर्मा के रूप में। उन्होंने आउट होने से पहले 75 रन बनाए 73 गेंदों में, और अभी यशस्वी जायसवाल खेल रहे हैं 100 रन बनाने के बाद, और साथ में उनके विराट कोहली। और अभी यशस्वी ने 107 रन बना लिए हैं अभी तक।
जी बिल्कुल, चर्चा करेंगे, लेकिन अब नजर डालते हैं अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। विशाखापट्टनम में तीसरे और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को जीत के लिए 271 रन का लक्ष्य दिया। निशानेबाजी विश्व कप फाइनल में सुरुचि ने स्वर्ण और संयम ने रजत पदक जीता। पुरुष हॉकी जूनियर विश्व कप के सेमीफाइनल में कल भारत का मुकाबला जर्मनी से, और प्रो कुश्ती लीग 15 जनवरी से फिर शुरू होगी। जैसा हमने शुरुआत में चर्चा किया कि विशाखापट्टनम में दक्षिण अफ्रीका के साथ तीसरे और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 38वें ओवर में एक विकेट पर 237 रन बना लिए हैं। दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 271 रन का लक्ष्य दिया है। दक्षिण अफ्रीका की टीम 47 ओवर और 5 गेंद पर 270 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। क्विंटन डिकॉक ने 89 गेंद में सबसे अधिक 106 रन की पारी खेली, और भारत के लिए कुलदीप यादव और प्रसिद्ध कृष्णा ने 4-4 विकेट लिए। 3 मैचों की श्रृंखला में दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर है, लेकिन अब तक अगर हम देखें तो सीरीज की जो स्थिति है जीत की, वो भारत के पक्ष में नजर आ रही है।
बिल्कुल, और अभी तो सिर्फ 34 या 35 रन बचे हैं। हम तो सीधे मैच यहाँ नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन ये जरूर है कि अभी ऐसा लगता है कि हम एक बड़े अंतर से इस मैच को जीत पाएंगे, और ये थोड़ा सुखद भी है, क्योंकि इस पूरे श्रृंखला में जिसमें कि पहले 2 टेस्ट की सीरीज खेली गई जो कि विश्व चैंपियनशिप के में काउंट करेगी, उसमें हम हारे, और अब जो है पहला ओडीआई तो हमने बहुत अच्छे से जीता था, और ये दूसरे में हमको हार मिली थी, और इस तरह से आज हम जीत जाएंगे ऐसा लगता है, और इसमें शक तो वैसे होनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये कहिए कि अभी सिर्फ एक विकेट डाउन हुआ है और 34 रन बनाने बाकी हैं, तो इसमें तो जीत होने जा रही है। लेकिन इसके बाद जो मैचेस होंगे वो T20 वाले होंगे
जी।
ऐसे शायद आपको याद होगा कि भारत जो है वो विश्व रैंकिंग में वनडे इंटरनेशनल जितने मैचेस हैं उनमें पहले नंबर पर है
जी।
और इसी तरह से T20 में भी भारत पहले नंबर पर है। अभी हालांकि साउथ अफ्रीका ने टेस्ट सीरीज जो है टेस्ट मैचेस में उन्होंने विश्व कप जीता है, तो वैसे साउथ अफ्रीका की ये जो टीम है वो भी बहुत ज़बरदस्त है और बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया है टेस्ट मैच में। और वैसे तो लोग ये कहते रहे हैं कुछ समय के लिए कि टेस्ट मैच ही असली परीक्षा होती है किसी भी टीम को परखने के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि ओडीआई और उसके बाद जो T20 के मैचेस की लोकप्रियता बढ़ी है उसके बाद से इस तरफ भी बहुत ध्यान गया है, और इसीलिए हम अभी भी कहते हैं कि हम भी विश्व विजेता रहे हैं ओडीआई में और T20 में भी
जी। अभी आपने जैसे जिक्र किया था कि पिछले टेस्ट सीरीज में जो जिस तरह से हार मिली, हालांकि इंग्लैंड और न्यूजीलैंड जैसी टीमों के बीच अब दक्षिण अफ्रीका का भी नाम आने लग गया है, क्या वजह रही है कि हम टेस्ट सीरीज इतनी बुरी तरह से हारे, लेकिन अब जिस तरह से वापसी देखी है भारत की ओडीआई में?
देखिए, ये दोनों ही टीमों का जो फॉर्मेट है, ये दोनों ही मैचों का जो फॉर्मेट है बिल्कुल डिफरेंट है, अलग अलग है। ओडीआई और लिमिटेड ओवर जो मैचेस होते हैं, जैसे T20 हुआ या वनडे इंटरनेशनल हुआ, इसमें समय के हिसाब से, ओवर्स के हिसाब से आपको रन बनाने हैं बगैर विकेट खोए, जो कि संभव नहीं होता, लेकिन इसमें जो महारत हासिल कर लेता है वो आगे जाता है। तो सीधी बात यह है कि आपके पास में टेस्ट सीरीज के लिए 5 दिन का खेल होता है। पहले एक जमाना था जब 6 दिन हुआ करता था, उसमें 1 दिन जो है ऑफ रहा करता था
जी।
पर अब वो नियम बदल दिए गए, लोगों के पास समय कम है और कम समय में ज्यादा खेलना, और इस तरह से टूर्नामेंट्स जो हैं वो चल रहे हैं पूरे विश्व में। तो अभी जहां तक सवाल है इस बार का, तो टेस्ट में और ओडीआई का जो इसमें मैचेस जो हुए हैं अभी, आज तो ये आखिरी ओडीआई है इस श्रृंखला में, जो कि साउथ अफ्रीका का जो टूर है इंडिया का उसमें, तो मेरे ख्याल से इसके बाद 5 और T20 के मैचेस होने जा रहे हैं। तो पहला बाराबंकी स्टेडियम कटक में होगा, वो 9 दिसंबर को होगा, 11 दिसंबर को होगा चंडीगढ़ में, 14 दिसंबर को होगा धर्मशाला में, 17 दिसंबर को लखनऊ और 19 दिसंबर को अहमदाबाद में। तो इनमें भी अपनी श्रेष्ठता साबित करनी होगी भारत को।
बिल्कुल। अब बात निशानेबाजी की कर लेते हैं। भारत की प्रतिभाशाली निशानेबाज सुरुचि सिंह ने दोहा में निशानेबाजी विश्व कप में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता, जबकि उनकी साथी संयम ने रजत पदक हासिल किया। इसके साथ ही भारत ने सत्र के आखिरी ISSF विश्व कप फाइनल के पहले दिन शानदार शुरुआत की। दिन में पहले 10 मीटर राइफल निशानेबाजों के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद सुरुचि ने फाइनल में 245.1 का शानदार स्कोर बनाकर स्वर्ण पदक जीतकर भारत के लिए दिन चमका दिया कह सकते हैं। वहीं जूनियर जो पूर्व जूनियर विश्व चैंपियन संयम है, उन्होंने 243.3 के स्कोर के साथ देश के लिए रजत पदक पक्का किया। और वहीं 2 बार की ओलंपिक कांस्य पदक विजेता मनु भाकर फाइनल में पहुंची, लेकिन 179.2 के स्कोर के साथ वे 5वें स्थान पर रही। तो निशानेबाजी में भारत ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रहा है, एक बार फिर से स्वर्ण पदक जीतना सुरुचि सिंह के लिए किस तरह से देखते हैं आप?
भारत में जो ओलंपिक्स, भारत का जो प्रदर्शन रहा है ओलंपिक्स में, उसमें पहला स्वर्ण पदक भी हमको शूटिंग में ही मिला था
जी।
जब अभिनव बिंद्रा ने 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स में ये मेडल दिलाया था भारत को, और इससे पहले किसी भी और मैच में या खेल में स्वर्ण पदक नहीं मिला था भारत को, लेकिन हॉकी को छोड़कर
जी।
तो ये जो ओलंपिक्स में होने वाले जितने भी मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स होते हैं, उसमें अगर हम हॉकी को छोड़ दें, तो ओलंपिक्स में जो पहला हमने स्वर्ण पदक जीता था 2008 में जीता था, तो हमारा इतिहास बहुत अच्छा रहा है, और उसका अनुकरण करने के लिए अगर हम कोशिश करते हैं तो निश्चित ही इस तरह के उभरने वाले खिलाड़ियों से बहुत उम्मीद रखनी चाहिए।
बिल्कुल। और बता दें कि भारत के पूर्व विश्व चैंपियन रुद्रांश पाटिल और पेरिस ओलंपिक फाइनल तक पहुंचने वाले अर्जुन बबूता पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में क्रमशः 4थे और 6ठे स्थान पर रहे। वहीं इलावेलिन वलारिवन भी महिलाओं के 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में पिछड़ गई हैं। चेन्नई में FIH पुरुष हॉकी जूनियर विश्व कप के सेमीफाइनल में कल भारत का मुकाबला जर्मनी से होगा। भारत ने कल क्वार्टर फाइनल मुकाबले में बेल्जियम को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। दोनों टीमें खेल समाप्त होने तक 2-2 के गोल से बराबर पर थीं, जिसके बाद भारतीय टीम ने पेनाल्टी शूटआउट में 4-3 से जीत हासिल की। भारत कल सेमीफाइनल में 7 बार के विश्व कप विजेता जर्मनी से भिड़ेगा। हालांकि भारत भी 2 बार जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप जीत चुका है, लेकिन 7 बार के विश्व कप विजेता से कितनी बड़ी चुनौती होगी?
देखिए, 2 बातें हैं भारत के पक्ष में। पहली बात तो पिछला जो मैच है वो एक जबरदस्त स्पर्धा करने वाली टीम से उन्होंने जीता, और जिस तरह से जीता वो बड़ा ही पीछे रहने के बाद फिर वापस आए
जी,
केम फ्रॉम बिहाइंड टू विन द मैच। और अब क्या है कि चूंकि ये मैच सारे जो विश्व कप के मैचेस हो रहे हैं, जूनियर हॉकी के विश्व कप के, वो हमारे यहाँ हो रहे हैं, चेन्नई में हो रहे हैं, हमारे ही वातावरण में, हमारे दर्शकों के सामने, तो इसमें ये फायदा तो थोड़ा रहेगा ही। जैसा कि खिलाड़ियों ने भी कल ये मैच जीतने के बाद लोगों ने कहा कि भाई हमारे दर्शकों ने हमारा बहुत साथ दिया, जो कि स्वाभाविक है, तो इस तरह से उन्हें भी जो उत्साह मिलता है उसका फायदा तो होता ही है। दूसरी बात, जो खिलाड़ी आए हैं अभी इस जूनियर विश्व कप में खेलने के लिए, वो सभी खिलाड़ी बहुत ही प्रॉमिसिंग हैं और लगता है कि आगे आने वाले समय में इनसे बहुत बड़ी बड़ी उम्मीदें की जा सकती हैं। जैसे खासतौर पर आप देखिए कि भारत के जो गोलकीपर जिनको कल के मैच के लिए प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया प्रिंस दीप सिंह, उन्होंने बहुत ही अच्छा गोल रक्षण किया और पेनल्टी जो शॉट्स होते हैं जिसमें 8 सेकेंड के अंदर 25 गज की रेखा से गेंद को लेकर के बढ़ना पड़ता है और गोलकीपर को छका करके गेंद को गोल में डालना पड़ता है, तो उसमें भी हमारे हमारी टीम के 4 खिलाड़ी उसमें सफल रहे, सिर्फ एक जो है वो उससे मिस कर गए। लेकिन इसको इसके बावजूद हम ये कह सकते हैं कि जो दूसरे खिलाड़ी हैं जैसे शारदानंद तिवारी जो डिफेंसिव खिलाड़ी हैं लेकिन आगे जाकर के भी वो अच्छा हमला बनाते हैं, उसी तरह से रोशन कुजूर, मनमीत सिंह, आनंद कुशवाहा, दिलराज सिंह, अर्शदीप सिंह, इनका भी प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है। और खासतौर पर 2026 में आपको मालूम होगा कि हमें जापान में जा करके एशियन गेम्स खेलने हैं, तो एशियाई खेलों में अगर हम टॉप पर रहते हैं तो हम ऑटोमेटिकली क्वालिफाई कर जाएंगे ओलंपिक्स के लिए अगली बार के लिए, तो ये एक बहुत बड़ी बात है जिसके बारे में सोच करके खिलाड़ी कल खेलेंगे और कल का मैच अगर वो जीतते हैं तो फाइनल में प्रवेश कर जाएंगे। ये सेमीफाइनल मुकाबला सभी टीमों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और इसको किस तरह से अंजाम देते हैं दोनों टीमों के खिलाड़ी, ये देखने की बात है।
अभी आप बात कर रहे थे पेनल्टी शूटआउट की, और हॉकी की जब भी बात होती है तो हमारी टीम की पेनल्टी शूटआउट की भी बात होती है, वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। जूनियर टीम कैसा कर रही है और कल के मैच के लिए अभी तक उन्हें किन किन गलतियों से सीखना चाहिए, किस तरह से बचाव करना चाहिए अपना?
देखिए, परफेक्शन ही एकमात्र ध्येय होना चाहिए खिलाड़ियों के लिए, लेकिन सब कुछ जो है इसी बात पर निर्भर नहीं करता कि कौन से खिलाड़ी या किस टीम के खिलाड़ी जो हैं ज्यादा चाहते हैं कि वो ज्यादा अच्छे ढंग से वो सामने आए। खेल तो सभी खिलाड़ी जी जान से खेलते हैं, लेकिन बहुत कुछ चीजें जो हैं वो निर्भर करती हैं कि उस ऐन मौके पर वो किस तरह का मानसिक संतुलन बना के रखते हैं और साथ ही साथ जो माइंड और बॉडी का जो तालमेल है, जो समन्वय है, तो वो कंपैटिबिलिटी को बनाए रखना जो है बड़ी चुनौती रहती है जिसको खिलाड़ी अचानक से सीख नहीं पाएंगे, लेकिन वो खेलते खेलते वो सीख आ जाती है और कॉन्फिडेंस आ जाता है।
बिल्कुल। प्रो कुश्ती लीग 2026 की शुरुआत 15 जनवरी से होगी। लीग का आयोजन नोएडा इंडोर स्टेडियम में होगा। ग्रैंड फिनाले 1 फरवरी को होगा। और अधिक जानकारी के लिए सुनते हैं रिपोर्ट।
भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष संजय सिंह ने बताया कि 20 से अधिक देशों के 300 से ज्यादा पहलवानों ने नीलामी के लिए पंजीकरण किया है। इसमें ओलंपिक्स पदक विजेता, विश्व चैंपियनशिप का फाइनल खेलने वाले और भारत के सीनियर पहलवान शामिल हैं। सभी 6 टीमों के रोस्टर में 4 महिलाओं समेत 9 पहलवान होंगे। सभी टीमों में 5 भारतीय और 4 विदेशी पहलवान हो सकते हैं। प्रो कुश्ती लीग को दुनिया एक उच्च गुणवत्ता वाले मंच के रूप में देख रही है। इसका सबूत वैश्विक पहलवानों का इस आयोजन के लिए आवेदन है। प्रो रेसलिंग लीग स्केल और व्यूवरशिप के मामले में सबसे बड़ी लीग बन सकती है। प्रो कुश्ती लीग की शुरुआत 2015 में हुई थी। ये लीग भारतीय कुश्ती को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने और फ्रीस्टाइल कुश्ती को मनोरंजक अंदाज में प्रस्तुत करने के लिए शुरू की गई थी। लीग में योगेश्वर दत्त, संदीप तुलसी यादव, बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट जैसे भारतीय पहलवान खेल चुके हैं। लीग 2020 से कोरोना और वित्तीय अनियमितताओं की वजह से रुकी हुई थी। 2026 में लीग फिर शुरू की जा रही है। लीग की शुरुआत देश के ऐतिहासिक खेल के लिए संजीवनी की तरह है। आकर्षिता सिंह, स्पोर्ट्स स्कैन।
और अब चलते चलते अपने श्रोताओं को बता दें कि भारत आज का मैच दक्षिण अफ्रीका से 9 विकेट से जीत चुकी है।
बहुत बहुत धन्यवाद आपको ये अच्छी जानकारी है हमें देने के लिए। और इसमें रोहित शर्मा ने आज 75 रन स्कोर किए, विराट कोहली 65 रन बनाकर नाबाद रहे और 116 रन पर खेल रहे थे
यशस्वी जायसवाल। और श्रोताओं, अब समय हो गया आप सभी से विदा लेने का। कल इसी समय फिर मुलाकात होगी खेल जगत की तमाम खबरों के साथ। रजत जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और खेल खबरों पर बात की, इसके लिए धन्यवाद।
धन्यवाद।
इसी के साथ मुझे यानी जया और पूरे स्पोर्ट्स स्कैन की टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।